Exato. Não, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما तो इस खुतबे और दुआओं के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मारुफुल कुरान के मुकदमे को हम इस क्लास में पढ़ते हैं जो कि उसकी जिल्द नंबर एक से है, एक में है। और इसमें जो आजकल मौजू हम पढ़ रहे हैं वो है इल्मे तफसीर का मौजू। तो इल्मे तफसीर के जो माखज़ होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ये बात पिछली क्लास में हमने अलग से करी थी कि कुरान मजीद की दो किस्म की आयात होती हैं। एक किस्म की आयात वो होती हैं कि जिनमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं होता, कोई उसके अंदर शरई मसाइल मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर वो आयात होती हैं। तो उन आयात की जो तफसीर की जाती है ना, तो उसके लिए सिर्फ अरबी लुगत काफी होती है। ठीक है, लेकिन वो उस तरह की ही आयात होती हैं जिनमें किसी किस्म का कोई इबहाम वगैरह, दकीक कानूनी मसाइल नहीं होते, गहरे असरार व मआरिफ नहीं होते हैं, कोई उसके पस मंजर को समझने की जरूरत वगैरह नहीं होती है। तो उनके लिए सिर्फ अरबी लुगत यानी अरबिक डिक्शनरी, वो डिक्शनरी भी खाली है नहीं कि बस कोई डिक्शनरी उठाई और उससे आपने अल्फाज के मानी देखे और उसके बाद उनकी तफसीर कर ली, बल्कि अरबी लुगत का इल्म जिसमें के अरबी अदब है, जो जो क्लासिकल अरबिक है, जमाने जाहिदिया की अरबी है, उसके अशआर और किताबें वगैरह, मतलब ये सारी बेसिकली लैंग्वेज नॉलेज। ठीक है, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ इज सफिशिएंट। फिर दूसरी किस्म की आयात जो होती हैं उनके अंदर कुछ पस मंजर को समझने की जरूरत होती है, कानूनी मसाइल होते हैं उसके अंदर, असार व मआरिफ होते हैं, तो उनके लिए फिर तफसीर की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो जो सोर्सेज हैं तो उनका ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले कुरान मजीद इटसेल्फ, कुरान मजीद से खुद जो है वो कुरान मजीद की आयात की तफसीर की जाती है, वो पढ़ चुके हैं हम। दूसरा जो माखज़ या सोर्स है वो हदीस मुबारक का है, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस। तो उसको भी हमने मारुफुल कुरान के से पढ़ लिया था, पेज नंबर 50 और 51 के ऊपर। ठीक है, हदीस किस चीज़ को कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के अफआल। ठीक है, वो भी जो किसी सहाबी ने देख करके बयान फरमाए वो भी हदीस है। ठीक है, अकवाल तो वो कौल हो गए ना, वो अल्फाज हो गए जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। फिर अफ़ाल क्या चीज़ होती हैं? अफ़ाल भी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए? नहीं, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए तो फिर तो वो अकवाल कहलाएंगे, वो अफ़ाल नहीं कहलाएंगे। तो फिर अफ़ाल क्या चीज़ होती है? अफ़ाल वो फेल, वो काम जो नबी अलैहिस्सलाम ने किए लेकिन सहाबी ने देख करके बयान फरमाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया। ठीक है, तो इनको जो है वो अफ़आल कहा जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर एक तीसरी भी चीज़ जो कि यहाँ पे हज़रत ने अगरचे नहीं लिखी लेकिन बाकी सारी किताबों के अंदर मौजूद होती है, जिसको कहते हैं तकरीर। ठीक है ना, अब तकरीर जो है वो हमारे नज़दीक तो तकरीर करने को उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, लेक्चर देना, तकरीर करना, लेकिन हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ तकरीर का मतलब क्या होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने किसी दूसरे शख्स ने कोई काम किया या कोई बात कही और नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर नकीर नहीं फरमाई, उसको मना नहीं किया और उसको गोया कि अप्रूव कर दिया कि हाँ दैट्स व्हाट ही सेज, सही है,
ऐसे ही है जैसे कि शख्स शख्स फरमा रहा है, कह रहा है, ठीक है, तो वो भी हदीस मुबारका के लिटरेचर में ही शामिल होता है, और वो भी इसको भी हदीस ही कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सामने होना इसकी शर्त है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो हदीस कहलाती हैं, और ये तो कुरान मजीद की तफसीर का दूसरा माखज है, दूसरा सोर्स है। तो अब इसके ऊपर जो हमने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी और तफसील जो कि हमने आपके सामने बयान करने का पिछली क्लास में कहा था वो ये था कि जब हम हदीस मुबारक की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग फिर जो एतराज़ करते हैं, चाहे वो बदनीयती की वजह से एतराज़ करते हों या कम इल्मी की वजह से एतराज़ करते हों, ठीक है ना, या तो उनका इल्म कम है, उनको पता ही नहीं, इस वजह से वो एतराज़ कर रहे हैं, या उनको पता तो है लेकिन उनकी नीयत खराब है, वो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, फितना फैलाना चाहते हैं, तो उसको कहेंगे बदनीयती की वजह से एतराज़ करते हैं। तो वो एतराज़ क्या करते हैं कि भाई कुरान मजीद जो है ना, ये तो अल्लाह की किताब है, और इसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, है ना, हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करते हैं। अब मजे की बात यह है कि हम ही ने इसको नाजिल किया, आगे नहीं फरमाया वह इन्ना नहनु लहाफिजून, ये नहीं फरमाया, बल्कि इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसकी हिफाजत करते हैं। नुजूल के अंदर अल्लाह ताला ने बराह रास्त खुद नाजिल फरमाया है ना, बीच में अगर वास्ता कोई था भी तो वो फरिश्ता था, फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, और फरिश्ते का जो वास्ता है वो गोया के नो वास्ता है, ठीक है ना, फरिश्ते को तो अल्लाह ताला हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फरिश्ते के वास्ते को गोया के कोई वास्ता नहीं उमूमन समझा जाता, ठीक है, अल्लाह ही ने नाजिल किया, सही है। और कुछ तो ऐसी भी थी जो कि हमने पीछे पढ़ी कि इवन फरिश्ता भी इन्वॉल्व नहीं था, अल्लाह ताला बजाते खुद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर नाजिल फरमा रहे थे, ठीक है, लेकिन हिफाजत का जहां पे मामला आया तो हिफाजत करते तो अल्लाह ही हैं लेकिन मखलूक के जरिए से करवाते हैं, राइट, हाफिज हाफिज कुरान के जरिए से अल्फाज की हिफाजत करवाते हैं, और उलमाए कराम के जरिए से मानी की हिफाजत करवाते हैं। तो वहां पर वह इन्ना लहू लहाफिजून, इन्ना नहनु लहू लहाफिजून कहते तो उसमें वो होता है कि मैं हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, भाई अल्लाह ही हिफाजत करने वाले हैं, उर्दू में तो हम ऐसे ही कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला जराए के असबाब के जरिए से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। बहरहाल, तो अब जो है ना वो कहते हैं कि जी कुरान मजीद की तो हिफाजत का अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है, हदीस मुबारका की हिफाजत का तो जिम्मा नहीं लिया, राइट, और हदीस जो है ना ये तो कंपाइल ही नहीं हुई थी, ये तो लिखी नहीं गई थी, और हदीस एक बाकायदा हदीस को ही पेश करते हैं इसके दलील में कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मना फरमाया था कि मेरी बातों को मत लिखा करो क्योंकि कुरान और मेरी बातों में फिर खलत मलत हो जाएगा, है ना, इस दलील को पेश करते हैं किस काम के लिए, हदीस का इनकार करने के लिए, हदीस ही को पेश करते हैं हदीस का इनकार करने के लिए, अजीब, ठीक है ना, तो बहरहाल कम अकल भी होते हैं और कम जो है वो नियत भी होते हैं, सही है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामकातुम ने इस एतराज के ऊपर जो है ना वो कुछ बातें लिखी हैं, वो हम आपके सामने जरा पढ़ना चाह रहे थे। तो फरमाते हैं कि बाज लोग ये मुगालता यानी ये गलत फहमी देने की कोशिश करते हैं कि कुरान करीम की तफसीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की अहमियत तो मुसल्लम है, हम मानते हैं कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत है, मगर चूंकि वो इरशादात हम तक काबिल एतमाद ज़राए से नहीं पहुंचे इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वही बात कि कुरान की तो हिफाजत की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, हदीस की हिफाजत की अल्लाह ने जिम्मेदारी भी थोड़ी दी है, तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, है ना, आपने भी सुना होगा और बहुत ज्यादा इस बात को यूज किया जाता है, अगरचे के आजकल जो है ना ये थोड़ा सा ये एतराज भी पुराना सा हो गया है, नए नए एतराज आते हैं ना, पुरानों को जो है वो उलमा जब हैंडल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो नया कोई ऊटी फुलंतरू छोड़ देते हैं, अब ये एतराज भी अब थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन अभी भी काफी लोग क्लियर नहीं है इसके जवाब में, ठीक है ना, उलमा ने जवाब तो दे दिया, वाम नास में उस जवाब को फैला दिया, लेकिन हमारे जहनों में वो रजिस्टर नहीं होता, और हम अगर कोई हमारे सामने एतराज करे ना तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। अगरचे कि हम खुद अब ये एतराज नहीं कर रहे हदीस मुबारका की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, अब हम खुद एतराज नहीं कर रहे, पहले हमें भी एतराज होता था क्योंकि हमें पता ही कुछ नहीं था, लेकिन जब हमने जवाब सुन लिया तो अब हमारा वो एतराज खत्म हो गया। लेकिन कोई नया बंदा आकर के इंटरनेट के ऊपर या कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर आकर के हमारे ऊपर ये एतराज करेगा ना, तो अब हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को। हमें याद ही नहीं होता कि क्या जवाब था जो कि हमने पहले सुना था, जिससे हम खुद क्लियर हो गए थे ना, वो हमें याद ही नहीं आता, वो हमें समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से इसकी दोहराई जो है वो फिर भी जरूरी रहती है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसके क्या जवाब दिया था, फरमाते हैं कि इस मुगालते का मतलब ये है, उम्मीद है कि आप लोग कुछ पेपर पेंसिल के साथ इसको लिख भी लेंगे तो ज्यादा याद रह जाएगा इंशाल्लाह, कि इस मुगालते का मतलब तो ये है कि अल्लाह ताला ने एक तरफ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का मुअल्लिम बनाकर भेजा और बार बार ये वाज़ह फरमाया कि आपको किताबुल्लाह की तशरीह व तौज़ीह के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि कुरान मजीद की कई आयात जो हैं वो यही बताती हैं कि आपको जो है वो लितुबैयना लिन्नासी, राइट, कि आप जो है वो इंसानों के सामने खोल खोल करके इसको बयान फरमाएं। ठीक है ना, तो कुरान मजीद तो एक लिमिटेड बुक है ना, इसको खोल खोल के बयान फरमाएं ये कौन करेगा, नबी अलैहिस्सलाम करेंगे। ठीक है ना, उसी तरह यतुल आयाती के बाद वो युअल्लिमुहुमुल किताब, कौन करेगा युअल्लिमुहुमुल किताब, नबी अलैहिस्सलाम करेंगे। ठीक है ना, तो फरमाते हैं कि कुरान मजीद का मुअल्लिम बना करके भेजा और बार बार कुरान मजीद के अंदर खुद ये वाज़े फरमाया कि आपको किताबुल्लाह की तशरीह और तौज़ीह के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए कयामत तक तमाम मुसलमानों का फर्ज है कि आपकी तालीमात की पैरवी करें। ठीक है ना, तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व तशरीहात को कयामत तक बारी बाकी रखने का कोई इंतजाम नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने एक तरफ तो हुक्म फरमा दिया लेकिन उस हुक्म के ऊपर अमल करने का कोई इंतजाम नहीं फरमाया। क्या ये बात कोई ऐसा शख्स कह सकता है जो अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा और कुदरत कामिला पर ईमान रखता हो और जिसने कुरान करीम के अंदर ये आयत पढ़ी हो कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को उसकी वसअत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। ठीक है ना, क्या मतलब कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की जो वजाहतें हैं, जो इसकी कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशंस हैं वो महफूज ही नहीं हैं, तो फिर हमारे ऊपर कैसे ये जिम्मेदारी आ सकती है कि हम उनको फॉलो करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसूल बता दिया कि मैं कोई ऐसी चीज आपके ऊपर वाजिब नहीं करता जिसकी पूरा करने की आपके अंदर इस्तेआत ना हो। ठीक है ना, तो भाई जिस चीज को महफूज ही नहीं रखा तो उसको तो पूरा करने की हमारे अंदर इस्तेआत हो ही नहीं सकती। ठीक है, कॉमन सेंस अकल वाली बात है ये। ठीक है, तो एक तो ये दलील हो गई ना कि भाई अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अती अल्लाह व अती रसूली, तो वेर इज अती रसूल का कंटेंट किधर है, अती रसूल का अल्लाह ने महफूज रखा है ना, तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं उसके ऊपर तो हम एतमाद ही नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी दलील कि बाज लोग यहां तक कह देते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने के लिए तो मुअल्लिमुल कुरान थे लेकिन हमारे जमाने में माज अल्लाह, अल्लाह की पना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जरूरत नहीं रही। ठीक है, लेकिन इस बेतुकी बात का मतलब इसके सिवा और क्या है कि वो सहाबा कराम जिनकी मादरी जुबान अरबी थी, जो उसके एक एक लफ्ज का लुगवी और मुहावराती मफहूम जानते थे, जो नुजूल कुरान के पूरे माहौल से ना सिर्फ बाखबर थे बल्कि इससे अमलन गुजर रहे थे, उस माहौल से अमलन खुद गुजर रहे थे, और जो एक एक आयत के पूरे पस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे, उन्हें तो किसी पैगंबर की तालीम के बगैर कुरान समझ में नहीं आ सकता था, है ना, उनको तो किसी टीचर की जरूरत थी कुरान समझाने के लिए। और उनके मुकाबले में इस जमाने के लोग, यानी हमारे जमाने के लोग, जिनकी ना मादरी जुबान अरबी है, ना नुजूल कुरान का माहौल उनके सामने है और ना उसके पस मंजर से वो आगाह हैं, उनको कुरान करीम की तफसीर जानने के लिए किसी पैगंबर की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बड़ा इंजामी तरीके से फरमाते हैं कि अगर जहन में अकल व खिरत और दिल में अदल व इंसाफ की अदना रमक भी बाकी हो ना, तो इस बेसरोपा बात को कौन बावर कर सकता है ना। थोड़ी सी भी अकल किसी के अंदर हो तो इस किस्म की जो बेतुकी बात है ना, कि नबी अलैहिस्सलाम की बातें जो है ना वो महफूज तो हैं लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है, उस जमाने में एप्लीकेबल थी, आज एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो इंतहाई यानी गधे जैसा इंसान ये बात कर सकता है ना, जिसके अकल जो है वो ऐसी कहा जाएगा उर्दू मुहावरे में, जिस तरह से गधे की अकल को कहा जाता है मुहावरे में, वरना गधा भी इससे ज्यादा अकलमंद होगा जो ऐसी बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बिल्कुल ही बेतुकी किस्म की बातें करते हैं, तो कोई होता नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा जो करते हैं ना फिर वो खुद ही जो है वो तफसीर भी बयान करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये हम बताएंगे कि कुरान मजीद की क्या तफसीर है। तो भाई तुम क्यों बता रहे हो कुरान मजीद की क्या तफसीर है, अगर जो है वो नाउज़ बिल्ला एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वाई आर यू डूइंग द तफसीर, वाई आर यू एक्सप्लेनिंग द आयत। ठीक है ना, असल में बस यही कह रहे होते हैं कि तुम जो है ना मौलवियों से कुरान की तफसीर सीखने के बजाय मुझसे सीखो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें तफसीर। ठीक है ना, असल में उनका ये मतलब होता है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि ये एक बड़ा मुफस्सल मौजू है, तफसीली मौजू है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिन ज़राए से हम तक पहुंची हैं वो कितने काबिले एतमाद ज़राए हैं। इस मौजू की तहकीक के लिए इल्म हदीस और असमाउर रिजाल के पूरे कुतुब खाने मौजूद हैं, यानी पूरी पूरी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। किस टॉपिक के ऊपर? बुक्स की, इल्म हदीस और असमाउर रिजाल। असमाउर रिजाल का जो इल्म होता है वो उसके बारे में भी आगे हम पढ़ते हैं, पूरे पूरे कुतुब खाने मौजूद हैं। और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए जबरदस्ती शरी जवाज ढूंढने की बात तो अलग है ना भाई। बेसिकली जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो तो एक जवाज ढूंढ रहे होते हैं अपने ख्वाहिशात की तकमील का, कि जी अप्लीकेबल ही नहीं है हमारे ज़माने में, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से जो चाहें हम करें। ठीक है, तो वो तो एक अलग ही मसला है ना, लेकिन अगर सच्चे दिल से इन उलूम का मुताला किया जाए तो इंसान इस नतीजे पर पहुंचे बगैर नहीं रह सकता कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को यूं ही रहती दुनिया तक वाजिबुल इत्तबा करार नहीं दिया, बल्कि उनकी हिफाजत का इंतजाम भी फरमाया है कि उसकी तफसीलात देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस को उम्मत के जरिए से ऐसे महफूज करवाया है कि उसकी तफसीलात को अगर आप देखें तो यानी आपकी अकल दंग रह जाएगी। ठीक है ना, माइंड ब्लोइंग जिसको कहा जाता है अंग्रेजी के मुहावरे के अंदर। हदीस के दूसरे शाह शाख दर शाख उलूम को छोड़कर, हदीस के दूसरे उलूम की बड़ी शाखें हैं उनको छोड़कर अगर सिर्फ एक असमाउर रिजाल के इल्म ही को देख लीजिए तो वो इस उम्मत का ऐसा काबिल फख्र और मुहय्यरुल उकूल कारनामा है कि जिसकी नज़ीर दुनिया में कोई कौम पेश नहीं कर सकती। असमाउर रिजाल का इल्म, ऐसा इल्म किसी कौम के पास नहीं है, ऐसा इल्म किसी जनरेशन के पास नहीं है, किसी नेशन के पास नहीं है ऐसा इल्म जैसे कि असमाउर रिजाल का इल्म है। के कैसा क्या है इस असमा रजाल के इल्म के अंदर, मुफ्ती तकी उस्मानी दामकातुम की जुबान से सुनते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे जमाने तक जिस किसी शख्स ने भी कोई हदीस कहीं भी बयान की है उस इल्म की किताबों में यानी असमा रजाल की किताबों में उसका पूरा कच्चा छट्टा वजाहत के साथ मौजूद है। हर शख्स जिसने कोई भी हदीस नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक के जमाने में बयान करी है तो उसका पूरा कच्चा छट्टा जो है ना वो पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। क्या क्या कच्चा छट्टा से क्या चीजें मुराद, कि वो कहाँ पैदा हुआ था, किस किस से उसने हदीस का इल्म हासिल किया, किन किन रावियों से उसकी मुलाकात हुई, उसका आम किरदार कैसा था, राइट, पर्सनैलिटी कैसी थी उसके, जो है वो अखलाक कैसे थे, किरदार कैसा था, कुव्वत हाफिजा किस दर्जे की थी, रिवायात बयान करते हुए एहतियात को किस हद तक मद्देनजर रखता था, उसके हम असर और बाद के उलमा ने उसके बारे में क्या राय जाहिर की है, राइट, उसके जो कॉन्टेम्प्ररी उलमा थे उसके जमाने के उन्होंने उसके बारे में क्या राय कायम करी थी कि ये सच्चा था झूठा था, याददाश्त का पक्का था या इसकी याददाश्त के अंदर जो है वो कुछ झोल था कमी बेशी थी, ये भी लिखा हुआ है असमाउर रिजाल की किताबों में और बाद के उलमा की भी। क्या राय थी इसके बारे में। आज भी हदीस की किसी किताब में जिस हदीस के जिस रावी का नाम चाहिए निकाल दीजिए, अस्माउर रिजाल की किताबों में उसके मुतालिक मजकूरा बाला सवालात का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इल्म हदीस जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि जी बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें लिख दी हैं तो वो बुखारी शरीफ कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर जो है वो हदीसें लिखी हुई मौजूद हैं, वो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर उसकी बड़े अच्छे तरीके से कॉपी बनाई जाती है। ये सिर्फ नहीं है इल्म हदीस, बल्कि उसके हर हदीस के जो रावी हैं, और वो रावी कैसे होते हैं, फलाने ने उससे रिवायत किया, उसने उससे रिवायत किया, उसने उससे रिवायत किया, उसने उससे रिवायत किया, उसने उससे रिवायत किया, हत्ता ते करते 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 फिर इस सहाबी से रिवायत किया, और उन सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत की। अब ये जितने रावी हैं, जितने नैरेटर्स हैं हदीस के, उनके ये सारी तफसीलात जो हैं वो असमाउर रिजाल की किताबों के अंदर मौजूद हैं, और वो इतनी सारी किताबें हैं कि पूरे पूरे कुतुब खाने उनके ऊपर कंप्राइज्ड है। ठीक है, तो फरमाते हैं कि यहाँ हदीस की हिफाजत के मौजू पर कोई मुफस्सल बहस पेश नज़र नहीं है, यानी ये तो उलूम तफसीर वाली किताब थी हजरत की, उलूम कुरान वाली, तो ये कोई असमाउर रिजाल की किताब तो है नहीं, तो इसके लिए तो तदवीन हदीस पर लिखी हुई बहुत सी मबसूत किताबें मौजूद हैं, बड़ी फैली हुई किताबें मौजूद हैं इसके ऊपर ना। लेकिन यहां सिर्फ इतना इशारा करना मकसूद था कि कुरान करीम की तफसीर के मामले में अहदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से इनकार व एराज एक ऐसा तर्ज अमल है जिस पर कुरान करीम, अक्ल आम और वाकयात तारीख किसी भी एतबार से गौर कीजिए, नतीजा हमेशा यही निकलेगा कि इसकी बुनियाद में माकूलियत का कोई छींटा भी नहीं पड़ा। यानी ये जो बात है ना कि नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस जो हैं ये काबिल एतमाद जराए से हम तक नहीं पहुंची हैं, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या लिख रहे हैं कि माकूलियत का छींटा भी नहीं है इसके अंदर, यानी छींट भी नहीं पड़ी, अकल के इस्तेमाल की छींट भी नहीं है इसके अंदर। जी सॉरी, तो क्या बात कर रहे थे कि इसमें माकूलियत का कोई जरा सा छींटा भी नहीं है, ये बात कहना कि हदीस जो है ना वो उसकी हिफाजत नहीं हुई है। ठीक है, बहरहाल ये दलाइल पेश किए जाते हैं कि भाई जिस अल्लाह ताला ने कुरान के अल्फाज की हिफाजत की गारंटी ली है ना, तो उसने कुरान मजीद के मानी के अल्फाज की भी गारंटी ली है, और मानी जो है वो सिर्फ कुरान मजीद से तो नहीं, कुरान मजीद की आयात के मिलते हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से मिलते हैं, तो हदीस मुबारक की हिफाजत भी ऐसी की है। अब ये इसकी थोड़ी सी तफसील अगर हमें पता चल जाए, जैसे कि आज हमने असमाउर रिजाल के बारे में सुना ना, तो ये बहुत मजबूत दलील है। ठीक है, असमाउर रिजाल की जो एग्जिस्टेंस है कि ये सिर्फ प्रिंटिंग प्रेसेस के जरिए से कुरान ये हदीस की हिफाजत नहीं हुई है, बल्कि ऐसे हिफाजत हुई है। ठीक, तो इससे फिर ना ये होगा कि हमारे जहन में फिर डाउट जो हैं वो दोबारा से रिक्रिएट नहीं होंगे, ना कोई कर सकेगा हमारे जहन के अंदर हदीस मुबारका की ऑथेंटिसिटी के बारे में डाउट्स पैदा, और हम जो है वो किसी को भी समझा सकते हैं खुद भी। अच्छा, तीसरा माखज कुरान मजीद की तफसीर के लिए वो सहाबाए कराम के अकवाल हैं। ठीक है, तीसरा माखज तो फरमाते हैं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कुरान करीम की तालीम बराहे रास्त अहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी, उसके अलावा नुज़ूल वही के वक्त वो बनफ्स नफीस मौजूद थे, और उन्होंने नुज़ूल कुरान के पूरे माहौल और पसे मंजर का बज़ात खुद मुशाहिदा किया था, इसलिए फितरी तौर पर कुरान करीम की तफसीर में इन हजरात के अकवाल जितने मुस्तनद और काबिल एतमाद हो सकते हैं, बाद के लोगों को वो मकाम हासिल नहीं हो सकता। ठीक है ना, उनके ऊपर यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो ऊपर नाजिल हो रहा था, तो बहुत से तो ऐसी आयात भी हैं जिनमें के सहाबा कराम को डायरेक्टली मुखातब किया जा रहा है उन आयात के अंदर। ठीक है, और सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट बराह रास्त स्टूडेंट्स हैं, तो भाई क्या नबी अलैहिस्सलाम जो है वो किसको समझा रहे थे? कुरान मजीद उन्हीं को तो समझा रहे थे ना, सहाबा कराम को तो समझा रहे थे। उन्होंने नहीं समझा तो फिर तो नाउजुबिल्ला ऐसा होता है ना कि जैसे उस्ताद ही बात अपनी नहीं समझा पाए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है, तो अगर फल जो है वो सारे के सारे बेकार हों, अगर वो पके हुए ना हों, नाउजुबिल्ला सड़े हुए हों फल, तो ये कहा जाएगा भाई दरख्त का मसला है कोई इसका मतलब है? दरख्त को जो है वो घुन लगा हुआ है, कीड़ा लगे हुए हैं, पैरासाइट्स लगे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे फल जो है ना वो किसी काम के ही नहीं है। तो नाउज बिल्ला सहाबा के ऊपर एतराज करना कि उन्होंने कुरान मजीद को नहीं समझा, तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतराज चाहता है ना। बहरहाल लिहाजा जिन आयतों की तफसीर कुरान या हदीस से मालूम नहीं होती है उनमें सबसे ज्यादा अहमियत सहाबा कराम के अकवाल को हासिल है। चुनाचे अगर किसी आयत की तफसीर पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इत्तेफाक हो तो मुफस्सरीन कराम उसी को इख्तियार करते हैं। ठीक है, उनका इत्तेफाक हो जाए किसी आयत की तफसीर के ऊपर तो उसी को इख्तियार किया जाता है। देखें अल्लाह ताला ने भी तो कुछ ऐसे ही तो नहीं, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ मुहावरतन कहा जाता है बात समझाने के लिए, ठीक है, कि कच्ची गोलियां नहीं खेली है ना, मैंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली ना, मैंने भी तो किसी मकसद से ये वाला काम किया है। तो अल्लाह ताला ने भी तो ये सारे जो हिकमतें हैं अल्लाह ताला की किसी मकसद से है ना, कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अपने अंदर जो है वो कुरान मजीद की हर आयत की तफसीर नहीं रखी। क्या नहीं रख सकते थे अल्लाह ताला? नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला के पास इल्म की कोई कमी थी? राइट, नहीं रखी कुरान मजीद के अपने अंदर कुरान मजीद की सारी आयात की तफसीर, हदीस की भी जरूरत को बाकी रखा। ठीक है ना, अच्छा अब हदीस मुबारका के अंदर बाकी सारी आयात जो कुरान मजीद में मौजूद नहीं थी जिनकी तफसीर, वो हदीस मुबारका में पूरी की पूरी तफसीर बयान कर देते, क्या मुश्किल काम था? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सारे उलूम खोल देते, और नबी अलैहिस्सलाम उलूम तो खोल दिए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीनन, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वो सब के सब अपनी अहादीस के अंदर बयान भी फरमा देते, लेकिन नहीं किया ऐसे। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं करवाया अपने हबीब अलैहिस्सलाम से, यानी कि इस चैप्टर को खोले रखा, सहाबा कराम तक भी खोले रखा कि हर चीज की तफसीर आपको कुरान और हदीस में नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला ने नहीं रखी, तो सहाबा कराम की रेलेवेंस भी बाकी रही ना। ठीक है ना, फिर सहाबा कराम की अकवाल में भी सब कुछ नहीं है, तो अगला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे उसके बाद, यानी ताबईन के अकवाल, उनकी भी रेलेवेंस बाकी रखी अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो कोई रीजन था, कोई हिकमत थी, कोई वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन सारे दरवाजों को खोल के रखा है। चुनाचे अगर किसी आयत की तफसीर पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इत्तेफाक हो तो मुफस्सिरीन कराम उसी को इख्तियार करते हैं और उसके खिलाफ कोई और तफसीर बयान करना जायज ही नहीं। हाँ, अगर किसी आयत की तफसीर में सहाबा कराम के अकवाल मुख्तलिफ हों, कि किसी सहाबी का ये कौल है, किसी दूसरे सहाबी का ये कौल है, तो बाद के मुफस्सिरीन दूसरे दलाइल की रोशनी में ये देखते हैं कि कौन सी वाली तफसीर को तरजीह दी जाएगी। ठीक है ना, अगर मुख्तलिफ कौल हो सहाबा कराम के, अच्छा इसके अंदर तरजीह भी बाद में की जाती है, पहले जो है वो तत्बीक की जाती है। तत्बीक, तत्बीक का मतलब ये होता है कि बज़ाहिर इख्तलाफ नजर आ रहा है लेकिन असल में इख्तलाफ नहीं है, बस उसको समझने की जरूरत है। असल में एक दूसरे अंदाज से देखा जाए, दूसरे को पहले अंदाज से देखा जाए, तो इख्तलाफ जो है वो रफा भी हो सकता है, तदबीक भी हो सकती है, कोरिलेशन भी हो सकती है, उर्दू में उसको कहेंगे हम आहंगी भी हो सकती है ना भाई। उसमें बजाय दो दोस्तों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, तो अब आप उनके दरमियान दोस्ती कराने की कोशिश करते हैं ना, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई आपकी बात भी ठीक है, इनकी बात भी ठीक है, बस देखने का दरअसल अंदाज मुख्तलिफ था, वरना बात दोनों की एक ही है। बहुत दफा ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको तदबीक करना कहते हैं, लेकिन जहां पे तदबीक मुमकिन ना हो रही हो, वाकई जो है वो उनका अलग मतलब है, इनका अलग मतलब है, तो अब उसके अंदर तरजीह दी जाती है। ठीक है, तरजीह की बुनियादें फिर बहुत सारी होती हैं, उनमें से एक बुनियादी बुनियाद क्या है, यानी तरजीह किसको प्रेफर किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक सहाबी ऐसे हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा कुर्ब हासिल था, ज्यादा वक्त उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, उनका इल्मी मुकाम ज्यादा है, जबकि दूसरे सहाबी जो हैं तो उन्होंने कम वक्त गुजारा, उनका इल्मी मुकाम कम है नबी अलैहिस्सलाम से सीखने का, तो जाहिर है तरजीह किसकी तफसीर को दी जाएगी, जिसका इल्मी मुकाम ज्यादा था। राइट, तो ये इस बुनियाद पर तरजीह दी गई। ठीक है ना, तो और फिर और भी बहुत सारी यानी रीजन हो सकती हैं तरजीह देने की। इस मामले में अहम उसूल और कवायद उसूल फिका,
बिल्कुल
उसूल हदीस और उसूल तफसीर में मुदवन मुदवन हैं, उनकी तफसीर का यहाँ पर मौका नहीं है। ठीक है, तो अक्वाले सहाबा में जाहिर सी बात है कि ये चेक किया जाएगा कि अच्छा, एक बात जो कि हमने पहले पढ़ी थी पिछले पेज के ऊपर जब हम हदीस का पैराग्राफ पढ़ रहे थे कि हदीसें जो हैं वो सही भी होती हैं, ज़ईफ़ भी होती हैं और मौजू भी होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना बस कहीं भी कोई हदीस के नाम से कोई बात लिखी हुई नज़र आ गई तो उसकी बुनियाद पर कुरान की तफसीर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता वो मौजू हदीस है, क्या पता वो ज़ईफ़ है और उसके मुकाबले में कोई दूसरी सही हदीस मौजूद है। तो जाहिर है कि सही हदीस को आप तरजीह देंगे तफसीर के लिए, ज़ईफ़ हदीस को उसके मुकाबले में तरजीह नहीं देंगे। ठीक है ना, उसी तरीके से अक़वाले सहाबा के अंदर भी ये जांच पड़ताल करनी होती है कि सहाबी का जो ये कौल है इसकी सनद कितनी मजबूत है ना, उसमें भी तो सही और ज़ईफ़ और मौजू कौल हो सकता है ना, किसी सहाबी की तरफ कोई गलत कौल मनसूब कर दिया हालांकि वो सहाबी ने कहा ही नहीं था, तो उम्मत ने तो ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो अब इसी वजह से जांच पड़ताल जो है वो करना जरूरी होते हैं। मुफस्सरीन जो है उनको उनका यह काम होता है कि जांच पड़ताल करें। ठीक है ना, अब जांच पड़ताल करके जब पता चल गया कि हाँ वाकई ये सहाबी का ही कौल है, तो अब उनके अंदर जो है ना फिर अगर दूसरे सहाबा के कौल से वो इत्तेफाक करता है तो फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं, लेकिन अगर इत्तेफाक नहीं करता बल्कि इख्तिलाफ करता है तो फिर पहले तदबीक करने की कोशिश की जाएगी, और अगर तदबीक ना हो सके तो फिर तरजीह देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तीसरा हो गया सहाबा के अकवाल, और फिर चौथा हो गया ताबईन रहिमहुल्लाह अनहुम के अकवाल। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बाद ताबईन का नंबर आता है, ये वो हजरात हैं जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर सहाबा कराम से सीखी है, इसलिए उनके अकवाल भी इल्म तफसीर में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगरचे के इस मामले में उलमा का इख्तिलाफ है कि ताबईन के अकवाल तफसीर में हुज्जत हैं या नहीं। ठीक है ना, हुज्जत है या नहीं है, हुज्जत का मतलब यह है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग दलील है कि इसकी बुनियाद पर कोई फर्ज साबित किया जा सके किसी अमल को, किसी अमल को जो है वाजिब साबित किया जा सके, किसी अमल को जो है वो हराम और मकरूह साबित किया जा सके, ये होता है हुज्जत। ठीक है, तो ताबीन के अकवाल जो हैं वो हुज्जत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, इसमें उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन उनकी अहमियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के एक वास्ते से शागिर्द बन, दरमियान में इनके और नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक वास्ता है, सहाबा कराम का वास्ता। ठीक है, तो ये भी जो है वो सबसे यानी तो सहाबा के बाद सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ नबी अलैहिस्सलाम ताबईन ही थे। ताबईन के अकवाल ये अंदर भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं जो कि सहाबा के अकवाल में फॉलो किए जाते हैं, यानी जांच पड़ताल कि भाई वाकई ये ताबी का कौल है भी कि नहीं है, और फिर इसके बाद ये कि ये जो ताबी का कौल है ये किसी सहाबी के कौल से इख्तिलाफ तो नहीं करता, अगर इख्तिलाफ करता है तो जाहिर है ऊपर वाले को तरजीह दी जाएगी, हदीस से कोई इख्तिलाफ तो नहीं करता, अगर करता है तो फिर हदीस को तरजीह दी जाएगी, ताबी के कौल को तरजीह नहीं दी जाएगी। ठीक है, और अगर दो ताबईन का किसी चीज़ के बारे में कॉल है और उनमें इख्तलाफ है तो फिर उनमें वही तदबीक और तरजीह का जो है वो रास्ता अख्तियार किया जाए। बहरहाल, तो ये हो गए ताबईन के अकवाल, चौथा माखज था ये। पांचवा माखज, पांचवा सोर्स ऑफ तफसीर, वो लुगत अरब। ठीक है, अरब लैंग्वेज, ठीक है, अरबी जुबान। तो फरमाते हैं कि कुरान करीम चूंकि अरबी जुबान में नाजिल हुआ है इसलिए तफसीर कुरान के लिए इस जबान पर मुकम्मल उबूर हासिल करना ज़रूरी है। कुरान करीम की बहुत सी आयात ऐसी हैं कि उनके पस मंज़र में चूंकि कोई शान नुजूल या कोई और फिकही या कलामी मसला नहीं होता, इसलिए उनकी तफसीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा व ताबईन के अकवाल मनकूल नहीं होते। ठीक है ना भाई, इट डिडंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दोज पीपल हु न्यू अरेबिक लैंग्वेज एज देयर कोर लैंग्वेज, एज देयर मदर लैंग्वेज। ठीक है ना, तो उनको तो अरबी जुबान आती थी और इसमें कोई ऐसा शरी मसला, कोई ऐसी चीज थी नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, सहाबा ने भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ताबईन ताबेईन ने भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना। तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन एक नॉन अरब के लिए कहाँ से आएगी? अरबी डिक्शनरी से आएगी, लुगत अरबी से आएगी, ठीक है, हमारे जैसों के लिए लुगत अरबी से उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो इसलिए उनकी तफसीर में ये चूंकि मनकूल नहीं है, चुनाचे उनकी तफसीर का जरिया सिर्फ लुगत अरब होती है और लुगत ही की बुनियाद पर उसकी तशरीह की जाती है। इसके अलावा अगर किसी आयत की तफसीर में कोई इख्तलाफ हो तो मुख्तलिफ आरा में मुहाकिमे के लिए भी इल्म लुगत से काम लिया जाता है। मुहाकमा मतलब जजमेंट, ठीक है। तो जजमेंट, फाइनल जजमेंट के लिए लुगत अरबी को भी इस्तेमाल किया जाता है। और तफसीर जब हम पढ़ते हैं तो अपनी इवन क्लासेस के अंदर भी ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पे ये बात लिखी है कि इवन सहाबा वर नॉट क्लियर अबाउट सर्टन वर्ड, तो फिर जो है ना उसकी समझ उन्होंने कैसे हासिल करी कि भाई ये लफ्ज जो है वो कबीला हुजैल के अंदर जो अरबी जुबान बोली जाती है ना उसके अंदर कबीला हुजैल के लोग जो हैं वो इस लफ्ज को इस मानी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है अरबी लुगत से तफसीर करना किसी बात को, ठीक है। अब इसका अरबी लुगत का मतलब ये कि थोड़ी कि उस जमाने में बाकायदा कंपाइल्ड लुगतें मौजूद थी, डिक्शनरीज जो है वो लिखी हुई होती थी। तो अरबी लुगत का मतलब यही है ना कि द वे दैट लैंग्वेज वॉज यूज बाय द अरब्स, अरब जुबान को कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसे बोलते थे, ठीक है। जैसे वो अब्बा, हमारे उर्दू वाला अब्बानी, वह जैतून व नखला व हदायका गुलबा व हदायका गुलबा व फाकिहत व अब्बा, राइट। फाकिहा तो ये तो बड़ा कॉमन पता था सबको कि ये जो है फल फ्रूट को कहते हैं फाकिहा, ठीक है ना। अब्बा, ये अब्बा क्या चीज होती है ये इवन सहाबा कराम को नहीं पता था, अब्बा, राइट। तो फिर जो है ना वो किसी दूसरे कबीले के अंदर सुना था किसी साहबी ने कि वो लोग जो है ना इस लफ्ज अब्बा को जो है वो इस मानी में इस्तेमाल करते हैं, है ना। शायद कुछ घास फूस वगैरह जिस किस्म का कोई लफ्ज था, मानी था उसका, ठीक है। डिडंट द सहाबा जस्ट आस्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली, ठीक है। डिडंट द सहाबा जस्ट आस्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली, नहीं। हर चीज, एक एक चीज जो है ना वो नहीं पूछी नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है। देखिए माशाल्लाह आप लोग जो है ना बैठे होते हैं ना जूम की क्लास के अंदर, ठीक है ना, और जो है वो इस तरीके से सामने बैठे होते हैं और जो है वो आपके सामने किताब भी मौजूद होती है और आपके सामने टीचर भी जो है ना वो हर वक्त अवेलेबल है। यही टीचर का काम ही आजकल किताब पढ़ाना है। नबी अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं था, बहुत सारे दूसरे काम थे। सहाबाए कराम का भी सिर्फ एक काम जो है ना वो सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं था, बहुत सारे दूसरे काम थे। और इस तरीके से कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो ऐसे अवेलेबल नहीं थे जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे अवेलेबल होंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस नहीं थे, है ना। वो एक असहाब सुफ़ा की जो एक मदरसा था तो वो भी उस फॉर्म का कोई थोड़ी था, वो तो कच्चा था, एक चबूतरा सा, वहाँ पे जो है वो बेड लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कपड़े भी पूरे पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कभी कुछ आ गया तो खा लिया तो पेट भर गया, नहीं तो भूखे पड़े हुए हैं, राइट। ऐसे हालात होते थे, ठीक है। तो अब दूसरा बात ये कि अल्लाह ताला, अभी पीछे बात हुई है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर क्यों नहीं रखी सारी तफसीर, अल्लाह ताला ने जो है वो हदीस मुबारक के अंदर हर चीज़ की तशरीह क्यों नहीं रखी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला लेफ्ट दीज डोर्स ओपन, उम्मत जो है ना वो ये काम करे, तहकीक का काम करे, इल्म के दरवाजे खोलें, इल्म के अबवाब खोलें, और इसमें फिर उनकी कुरान मजीद के साथ जो ताल्लुक है इस ताल्लुक का जो है वो इम्तिहान हो कि जी कितना गहरा ताल्लुक बनाते हैं कुरान मजीद के साथ। और जो है ये जब कोई इख्तिलाफी मामला पेश आता है तो उस वो इख्तिलाफ को कैसे हैंडल करते हैं, ये आजमाइशें भी तो अल्लाह ताला ने रखनी थी ना। ये दुनिया की जिंदगी किस लिए, आजमाइश के लिए तो है। वो कहते हैं ना अगर प्लेट में बना बनाया हलवा है, हलवा सामने रख दिया जाए और बल्कि चमचे से आपके मुंह के अंदर भी डाल दिया जाए तो फिर आजमाइश कौन सी। ओ जी बड़ी आजमाइश है, मुझे चिबाना पड़ रहा है इस हलवे को, राइट, मुझे इसको जो है ना वो गुड़प करना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को कहते हैं गुड़प करना, है ना, सॉलो करना पड़ रहा है, वो बड़ी आजमाइश है जी मेरे लिए, इसको मुझे सॉलो खुद ही करना पड़ रहा है, कोई दूसरा मेरी तरफ से क्यों नहीं सॉलो कर लेता, ठीक है ना। तो ये बने बनाए हलवे और बने बनाए खीर, तो फिर तो आजमाइश कोई ना हो ना। तो अल्लाह ताला ने इंटेंशनली दिमाग में ये आइडिया ही नहीं आने दिया कि भाई अब्बा का जो लफ्ज है ना, जो तुम जो तिलावत कर रहे हो अब्बा का लफ्ज है, नबी अलैहिस्सलाम में जाकर के पूछो अब्बा का मतलब क्या होता है, आया ही नहीं जहन के अंदर, अल्लाह ने लाने ही नहीं दिया। तो फिर द डोर वॉज लेफ्ट ओपन, ठीक है ना, कि अब जो है ना, जब आप लोग खुद बैठ करके इसके बाद में गौर करेंगे, देन रिवील होगा किसी और बंदे के जरिए से कि जी अब्बा का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसी तरह और भी बहुत सारे मामलात हैं कुरान मजीद के अंदर। ये दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, और तरह तरह से अल्लाह तआला आजमाइशें करवाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स एंड साइजेस ऑफ आजमाइशें मौजूद हैं दुनिया की जिंदगी के अंदर। बहरहाल, तो लुगत अरब के बारे में फिर ये बात है। ठीक है, फिर उसके बाद जो तदब्बर और इस्तिंबात है, ये हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि अगली क्लास में इंशाल्लाह लुगत अरब के ऊपर जो है ना, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक आर्टिकल है, हमारे मुफ्ती साहब होते हैं उन्होंने शेयर किया अपने दौर के लुगती साहब के बारे में, ठीक है ना, मीडिया स्कॉलर भी उनको कहते हैं, और उनका नाम है जावेद अहमद गामदी साहब, ठीक है ना। तो उनकी तफसीर क्या है, उनका जो ओपिनियन है, और उनके उनके उस्ताद साहब का भी ओपिनियन क्या था कि बस ये लुगत ही है, बस कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ जो है ना, वो लुगत अरबी की बुनियाद पर उसकी तफसीर की जाएगी और बस, नथिंग एल्स। यानी कोई सर पैर कोई है नहीं इस वाली बात का, बेशक कोई सर पैर नहीं है उनकी इस बात का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जहालत के उस दौर में मौजूद हैं, राइट, जहालत के भी उस दौर में मौजूद हैं, अकल की खराबी के भी दौर में मौजूद हैं, और नफ्स परस्ती की भी ऐसे दौर के अंदर मौजूद हैं कि इवन ऐसी बात करने वालों को भी हजारों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, राइट, और बड़े लोगों को जो है ना, वो गुमराह करने के और रास्ते से हटाने के में अंदर वो कामयाब हो जाते हैं। इस वजह से जावेद अहमद गांधी जैसे शख्स को भी इतने सारे लोग फॉलो करते हैं कि हैरानी होती है, क्योंकि तो बड़ी किताबें पढ़ने वाले थे, ये तो बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने वाले थे, ये तो बड़े जो है वो एकेडमिक किस्म के लोग थे, ऐसे लोगों को भी यानी वो भी इनको फॉलो करना शुरू हो गए, जिनकी बातों का ना कोई सर ना कोई पैर, राइट। तो बस इस वजह से हमारे उलमा जो है वो उनकी इन बातों के ऊपर जवाब भी देते हैं। तो एक आर्टिकल हमारे सामने इसी टॉपिक के ऊपर आया था, लुगत अरब की बुनियाद पर जो उन्होंने अपनी बातें करी हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ के फिर उसके बाद तदब्बर इस्तिंबात के ऊपर जो हजरत ने यहाँ लिखा है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्लास आज के खत्म करते हैं। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।